लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, 1 फरवरी को म्यांमार की सेना लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार से सत्ता छीनकर सरकार के नेताओं को जेल में डाल दिया। सैन्य शासन ने सत्ता की बागडोर 1 वर्ष तक अपने हाथों में रखने की घोषणा की है। म्यांमार में लगभग 50 वर्षों का सैनिक शासन खत्म होने के बाद नवंबर 2020 में हुए चुनाव देश के इतिहास में केवल दूसरे चुनाव थे। उससे पहले वर्ष 2015 में चुनाव हुए थे, जिसमें भी आंग सान सू की के नेतृत्व वाली एनएलडी ने जीत हासिल की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने म्यांमार में सेना द्वारा देश के राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की तीखी निंदा की है। यूएन महासभा के अध्यक्ष बोलकान वोजगीर ने भी म्यांमार की हालात पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और विधि के शासन की अहमियत को कम करने के प्रयास अस्वीकार्य हैं। उन्होंने हिरासत में लिए गए तमाम राजनीतिक नेताओं की तुरंत रिहाई का भी आह्वान किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को जारी प्रेस वक्तव्य में म्यांमार में हाल ही में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद ने साथ ही देश की निर्वाचित हस्तियां आंग सान सू ची और विन मिंत की तत्काल रिहाई का आग्रह किया है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने म्यांमार के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रयासों को समर्थन जारी रखने की बात कही है। बुधवार को म्यांमार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, लेकिन वक्तव्य के मसौदे पर सहमति नहीं बन पाई थी। सुरक्षा परिषद ने जोर देकर कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं को बरकरार रखना होगा, हिंसा से दूर रहना होगा और मानवाधिकारों, बुनियादी आजादियों व कानून के राज का पूर्ण सम्मान करना होगा। उससे पहले यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता द्वारा रविवार को जारी एक वक्तव्य में म्यांमार में तमाम विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां सेना को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। वक्तव्य में कहा गया था कि इन घटनाक्रमों में म्यांमार में लोकतांत्रिक सुधारों को एक गंभीर झटका नजर आता है। यूएन महासभा के अध्यक्ष बोलकान बोजगीर ने भी म्यांमार में हालात पर चिंताएं व्यक्त की हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और विधि के शासन की अहमियत को कम करने के प्रयास अस्वीकार्य हैं। उन्होंने भी हिरासत में लिए गए तमाम राजनीतिक नेताओं की तुरंत रिहाई का आह्वान किया।
वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के अब तक 10,83,00,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है और 23,79,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोविड-19 संक्रमण के जितने मामले अब सामने आ रहे हैं, उसे कहीं बड़ी संख्या में महामारी के रोकथाम के लिए एक दिन में टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है कि टीकाकरण अभियान केवल साधन संपन्न विकसित देशों में ही चल रहा है, इसका दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसी क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी देशों के लिए वैक्सीन की खुराकों की खेप भेजे जाने की तैयारी जोर कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने जिनेवा में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 130 देशों में 2.5 अरब लोगों को अभी वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिल पाई है। महानिदेशक गेब्रियसिस ने कहा कि ये सभी सरकारों का दायित्व है कि वो अपने लोगों की रक्षा करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीके लगाए जाने के बाद अपनी बाकी आबादी की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है कि वैक्सीनों का वितरण किया जाए ताकि अन्य देश भी ऐसा कर सकें।
All governments have an obligation to protect their own people. But once countries with vaccines have vaccinated their own health workers and older people...
महानिदेशक गेब्रेसिस कह रहे थे कि इसलिए जरूरी है क्योंकि अन्य देशों में जो लोग संक्रमण का सबसे ज्यादा जोखिम झेल रहे हैं उन्हें टीके दिए जाने में देरी से वायरस के अपना रूप बदलने और वैक्सीनों से बच निकलने का रास्ता तैयार होता है। दूसरे शब्दों में अगर हमने वायरस पर हर जगह काबू नहीं पाया तो हम फिर से वहीं पहुंच सकते हैं जहां से हम चले थे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली साझा पहल कोवैक्स के तहत फरवरी महीने में कोविड 19 वैक्सीन की 9 करोड़ खुराकों को अफ्रीकी देशों में भेजे जाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि अफ्रीकी महाद्वीप पर यह पहली बार होगा जब इतने व्यापक स्तर पर टीकाकरण मुहिम को संचालित किया जाएगा। 9 करोड़ शुरुआती खुराकों के जरिए अफ्रीकी आबादी के 3% हिस्से के टीकाकरण में मदद मिलेगी जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कहा है कि जनवरी 2021 एक बेहतर अहम दशक की शुरुआत को परिलक्षित करता है जिसके जरिए टिकाऊ विकास के लिए महासागरों की रक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। यूनेस्को ने बुधवार 3 फरवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें अगले 10 वर्षों में अहम कार्रवाई को आगे बढ़ाने और महासागरों से उपजती चुनौतियों व अवसरों पर चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूनेस्को ने बुधवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जिसके साथ ही टिकाऊ विकास के लिए महासागर विज्ञान के यूएन दशक की शुरुआत हो गई। इस दशक का लक्ष्य टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महासागरों से उपजने वाले अवसरों और चुनौतियों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। वर्ष 2021 को महासागरों के लिए एक सुपर ईयर करार दिया गया है। यूनेस्को के अनुसार ये वर्ष स्वस्थ पृथ्वी के लिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापक संकल्प की शुरुआत को इंगित करता है। बताया गया है कि महासागरों के दशक के जरिए देशों के पास साथ मिलकर काम करने का एक ऐसा अवसर है जो जीवन में एक ही बार आता है। समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप महासागर विज्ञान का लाभ उठाए जाने की योजना है ताकि साझा महासमुद्रों का टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। महासागरों की रक्षा और उनका सतत प्रबंधन भोजन और आजीविका के लिए और जलवायु व्यवधान व अन्य संबंधित त्रासदियों से निपटने के लिए बेहद अहम है। मानवता को पोषित और जलवायु को नियमित करने में महासागरों की क्षमता को पुनर्बहाल करना एक बड़ी चुनौती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि प्रकृति के साथ समरसता कायम की जानी होगी ताकि एक समृद्ध और न्यायोचित विश्व सुनिश्चित किया जा सके। यूएन एजेंसी की प्रमुख ऑड्री अजोले ने बताया कि कोरोना वायरस से उभरने के बाद जैसे जैसे दुनिया नए हालात में ढल रही है महामारी के बाद पुनर्बहाली प्रयासों में महासागर विज्ञान की अहम भूमिका होगी।
श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भारत के उत्तराखंड प्रदेश में ग्लेशियर टूटने से जान माल के भारी नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत के उत्तराखंड प्रदेश में 7 फरवरी रविवार सुबह हिमालय क्षेत्र के एक ग्लेशियर टूटने के बाद बहुत तेज रफ्तार वाली बाढ़ आई जिसमें भारी चट्टाने और मलबा नीचे की तरफ बह निकला जिसमें अहम बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होने की खबरें हैं। ऋषि गंगा तपोवन 2 बिजली संयंत्रों के निर्माण स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने रविवार रात को एक जारी वक्तव्य में कहा कि महासचिव उत्तराखंड प्रदेश में ग्लेशियर टूटने और उसके बाद आई बाढ़ में अनेक लोगों की मौत और अन्य अनेक के लापता होने पर बहुत दुखी हैं। वक्तव्य में महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, साथ ही आमजन और भारत सरकार के साथ भी सहानुभूति व्यक्त की है। वक्तव्य में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र राहत और बचाव कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद है। और इसी के साथ हम यूएन रेडियो से लिए गए सामयिक लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आइए अब सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने चालीसा काल के लिए प्रकाशित अपने संदेश में कहा है कि चालीसा काल विश्वास, आशा और प्रेम का उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि अपनी चालीसा कालीन तीर्थ यात्रा के दौरान हम प्रभु येसु मसीह का स्मरण करें, जिन्होंने क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने आप को दीनहीन बना लिया। प्रभु येसु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण की याद में विश्व के ख्रिस्तीय धर्मानुयायी प्रतिवर्ष 40 दिन तक प्रार्थना, उपवास और परहेज द्वारा मन परिवर्तन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इस वर्ष चालीसा काल 17 फरवरी से 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। चालीसा काल के उपलक्ष्य में शुक्रवार को प्रकाशित अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि संपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन की तीर्थ यात्रा के सदृश ही चालीसा कालीन तीर्थ यात्रा प्रभु येसु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के प्रकाश से रोशन होकर मसीह के समस्त अनुयायियों के विचारों, दृष्टिकोणों और निर्णयों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि प्रभु येसु द्वारा प्रचारित उपवास, प्रार्थना और दान पुण्य हमारे मन परिवर्तन को संभव बनाते हैं। अकिंचनता और आत्मत्याग तथा निर्धनों के प्रति उत्कंठा और प्रेमपूर्ण देखभाल, साथ ही प्रार्थना में पिता ईश्वर के साथ संवाद, विश्वास, जीवंत आशा और प्रभावी दान पुण्य के जीवन को संभव बनाता है। संत पापा ने लिखा, विश्वास सत्य को स्वीकार करने तथा ईश्वर और हमारे भाई बहनों के समक्ष सत्य का साक्ष्य देने में हमारी मदद करता है। इस चालीसा काल के समय हम कलीसिया द्वारा सदियों के अंतराल में प्रसारित ईश्वर के वचन का पाठ करें तथा उस पर मनन चिंतन करें। यह याद रखें कि सत्य कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह केवल कुछ एक बुद्धिमानों के लिए आरक्षित नहीं है, अपितु यह वह संदेश है जिसे वे सब प्राप्त कर सकते हैं जो अपने मन के द्वारों को ईश्वर के शब्द के लिए खुला रखते हैं। येसु ख्रीस्त स्वयं सत्य हैं, येसु ख्रीस्त ही हैं जो हमें जीवन की परिपूर्णता तक ले जाते हैं। उन्हीं में हम अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करें। चालीसा काल के दौरान अपने कम नसीब भाई बहनों की मदद की गुहार लगाते हुए संत पापा ने लिखा, येसु द्वारा दर्शाए गए प्रेम, दया और पड़ोसी के प्रति उत्कंठा का स्मरण करते हुए पीड़ितों, अकेले जीवन यापन करने वालों, बीमारों, बेघर और समाज से तिरस्कृत तथा जरूरतमंदों का हम विशेष ध्यान रखें। वेटिकन रेडियो की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने एक संदेश प्रकाशित कर समस्त रेडियो कर्मियों से आग्रह किया है कि वे सत्य की प्रकाशना से कदापि न थकें। उन्होंने लिखा, वेटिकन रेडियो के प्रति धन्यवाद जो सुदूर और खोई हुई जगहों पर भी पहुंचता है। साहस और रचनात्मकता के साथ दुनिया से बात करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। वेटिकन रेडियो की स्थापना 12 फरवरी सन 1931 ईस्वी को संत पापा पियूस 11वें द्वारा की गई थी। तब से अब तक वेटिकन रेडियो 44 विभिन्न भाषाओं में संपूर्ण विश्व में प्रसारण करता रहा है। हिंदी भाषा प्रसारण सन 1965 ईस्वी में आरंभ हुआ था। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको रेडियो की सालगिरह मुबारक। इन शब्दों से वेटिकन रेडियो को प्रेषित बधाई संदेश में संत पापा ने लिखा, इतिहास की स्मृति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, तथापि अतीत के लिए हम उदास न हों, अपितु भविष्य के प्रति उत्कंठित रहें, जिसके निर्माण के लिए हम बुलाए गए हैं। संत पापा लिखते हैं, आपके काम के लिए धन्यवाद, उस प्रेम के लिए धन्यवाद जिसकी वजह से आप निष्ठापूर्वक अपना मिशन पूरा करते हैं। रेडियो में यह सुंदरता है कि यह सबसे दूरस्थ स्थानों में भी शब्द को ले जाता है और आज तो यह आवाज के साथ साथ छवियों और लेखन को भी लोगों तक पहुंचा रहा है। दुनिया के साथ संवाद को जारी रखने के लिए आप साहस और रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ते जाएं और एक ऐसे संप्रेषण माध्यम का निर्माण करें जो चीजों के सत्य को प्रकाशित करने में सक्षम हो। गौरतलब है कि संदेश का निष्कर्ष विश्व सामाजिक संप्रेषण दिवस मई 2021 के लिए हाल में प्रकाशित संदेश में सभी मीडिया पेशेवरों को संबोधित आमंत्रण के अनुरूप है, जिसमें सत्य से भ्रामक स्थिति को अलग करने का आमंत्रण निहित है। विशेष रूप से उस सत्य को प्रकाश में लाने का मीडिया से अनुरोध किया गया है जिसे प्रायः इसलिए बताया नहीं जाता क्योंकि सत्य का पता लगाना या तो कठिन होता है या फिर उदासीनता के कारण सत्य का पता लगाने की जहमत ही नहीं उठाई जाती है। प्रचार क्षेत्र में कार्यरत मीडिया कर्मियों से संत पापा फ्रांसिस का प्रस्ताव है कि वे आएं और देखें, इसलिए कि जो कुछ सामने प्रतीत होता है वह सब सच नहीं होता। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से सत्य की खोज आवश्यक है। मडागास्कर के निर्धनों और हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के हित में काम करने वाले कैथोलिक पुरोहित लाजरस धर्म समाज के सदस्य फादर पेड्रो ओपेका को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। अर्जेंटीना और स्लोवेनिया के लाजरस धर्म समाजी पुरोहित फादर पेड्रो ओपेका तथा उनके लोकोपकारी संगठन मैत्री का शहर, जिसका नाम है अकमासोआ, को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री यानेस यांसा द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार अकमासोआ संगठन ने सामाजिक और मानव विकास में एक उत्कृष्ट योगदान दिया है तथा मडागास्कर को सतत विकास हेतु 2030 तक रखे गए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस विरोधी टीकों के असमान वितरण की निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि यह एक आत्म पराजित रणनीति है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशिका एनरिएटा फोरे तथा WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस ने बुधवार को एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित कर कहा कि अब तक दी गई 12 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की खुराकों में से 3/4 से अधिक टीकाकरण विश्व के सिर्फ 10 देशों में किया गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह आत्म पराजित रणनीति जीवन और लोगों की आजीविकाओं को नुकसान पहुंचाएगी, वायरस को परिवर्तित होने का अवसर देगी तथा वैश्विक आर्थिक सुधार को कमजोर करेगी। संयुक्त राष्ट्र की उक्त एजेंसियों अर्थात यूनिसेफ और WHO ने विश्व के नेताओं का आह्वान किया कि वे अपने अपने देशों की सीमा के परे देखें तथा एक ऐसी वैक्सीन रणनीति को अपनाएं जो वास्तव में कोविड महामारी को समाप्त करने तथा इसके वेरिएंट्स यानी इसके प्रकारों को सीमित करने में सक्षम हो। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।